समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ पर्वतारोही पर्वत पे चल रहे थे, हिमालय की पर्वत पे। अचानक एक पर्वतारोही का पैर फिसल गया और वो नीचे की ओर गिरने लगा। शाम की वेला हो चुकी थी। गिरते गिरते अचानक एक टहनी उसके हाथ में आ गई। उसने वो पकड़ लिया और लटकने लगा, दिल से ईश्वर को याद करने लगा। शाम हो चुकी थी। जब उसने दिल से ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर आ गए और ईश्वर ने कहा कि तुमने पुकारा, मैं चला आया हूँ, बोलो। तो उसने कहा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं गिर रहा हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो पर्वतारोही ने कहा कि आप पे विश्वास है, तभी तो मैंने आपको पुकारा है प्रभु और आप आ गए हैं। तो ईश्वर ने कहा यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम ये टहनी जिसे तुमने पकड़ रखी है उसे छोड़ दो। तो उस पर्वतारोही ने कहा कि प्रभु इतनी ऊपर से गिरते गिरते आ रहा हूं, बड़ी मुश्किल से तो ये टहनी मेरे हाथ में आई है, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तब तो मैं मर जाऊंगा ना। उन्होंने कहा नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम इसे छोड़ दो। पर्वतारोही ने कहा कि प्रभु और कोई उपाय नहीं है, कोई और चारा, कोई और तरीका? तो प्रभु ने कहा नहीं, बस यही एक तरीका है कि तुम इसे छोड़ दो। तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे, जीवित रहोगे। लेकिन वो जो पर्वतारोही था उसके मन में संशय के भाव उठने लगे कि छोड़ूं या ना छोड़ूं। लेकिन प्रभु ये कहते कहते कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे कहते कहते वो अंतर ध्यान हो गया। अब ये इस उहापोह की स्थिति में था ये पर्वतारोही कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं। गहरी रात होने लगी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और ये अपनी उस स्थिति से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया, अपने संशय की स्थिति से, और वहीं लटका रहा। लेकिन ठंड बढ़ती गई और ठंड से ठिठुर के उसकी मृत्यु हो गई। सुबह रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने देखा कि वो पर्वतारोही एक टहनी को पकड़ के लटका हुआ है और ठीक उसके 5 फीट नीचे ही जमीन है। यदि वो पर्वतारोही हाथ छोड़ देता तो 5 फीट नीचे जमीन थी, जमीन पे गिरता और जमीन से गिरने के पश्चात वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच सकता था, लेकिन इस संशय ने उसके प्राण ले लिए। मित्रों, कई बार हम भी प्रभु कहते रहते हैं छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन हम भी इस उहापोह की स्थिति में रहते हैं कि छोड़ें या ना छोड़ें, छोड़ें या ना छोड़ें। जो छोड़ देते हैं वो तो तर जाते हैं और जो नहीं छोड़ते उनकी हालत क्या होती है वो तो आप समझते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए वो शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन मित्रों हमें जरूर विचार करना चाहिए कि जो छोड़ने वाली चीजें हैं उन्हें हमें छोड़ते चलना चाहिए। यदि हमें प्रकाश की ओर चलना है, यदि हमें सद्गति की ओर चलना है, यदि हमें सत्य ज्ञान की ओर चलना है तो कुछ चीजों को तो हमें छोड़ना ही होगा, और वो विवेक, वो ज्ञान लगातार आपको पीस ऑफ माइंड चैनल दे रहा है। मित्रों, आइए इसे शुभकामना के साथ कि आप बुराइयों से मुक्त होते हुए इस भव सागर से तर जाएं, आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
प्रभु तो कहते ही रहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन मनुष्य छोड़ क्यों नहीं पाता?
नहीं, मुझे दूसरी बात पहले कहनी है
जी
कि जहां भगवान और भक्त या भगवान और उसके बच्चों की बात हो आमने सामने, वहां मनुष्य को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये करूं या ना करूं।
विश्वास
तो जो भगवान कह रहे हैं उसको आंख बंद करके कर लेना चाहिए। अगर वो हाथ छोड़ देता और मान लो गिरकर उसकी मृत्यु भी हो जाती तो प्रभु के साथ वैकुंठ जाता ना,
स्वर्ग
को लेने आ गए थे वो। लेकिन उसने अपना संशय बरकरार रखा, ये बहुत खराब चीज है। ज्ञान मार्ग पे चलने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि बाबा की आज्ञा में कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परम कल्याणकारी है। अगर वो कह रहा है कि ये कर दो तो बिल्कुल कर देना चाहिए। वो कह रहा है ये नहीं करो, भले ही हमें अच्छा दिख रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है
जी,
उसकी आज्ञाओं पर पूरी तरह खरा उतरना। रही बात छोड़ने की, सो तो वो बुराइयों को छोड़ने का ही आदेश दे रहा है। वो बुराइयां जिन्होंने हमें दुखी किया है, वो बुराइयां जो मनोविकार बनकर हमें बिल्कुल नीचे ले आई हैं, जो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी अवरोध हैं, जो हमें सफल नहीं होने देते। आजकल जो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है परिवारों में, जो सुख शांति नहीं कायम होने देती, उन बुराइयों को छोड़ देना, ये उसके हित में नहीं, हमारे हित में है।
लेकिन छूट नहीं रही है। हाँ। ये वाली तकलीफ है। ब्रदर जी, कल ही मैं एक मेल देख रहा था तो एक यंग हमारे भाई का मेल था और वो भी शायद 2 वर्ष से विद्यालय से जुड़े हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कितना होता है ये तो अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले मुझे आदत लग गई थी कुछ गलत साइट्स पे जाने की, कुछ फोन फिल्में जो हैं वो देखने की, कुछ ऐसी पत्रिकाएं देखने की, अब लगातार मेरा जो विवेक है मुझे कचोटता रहता है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति, चलिए एक एग्जांपल मैंने दिया, लोगों के साथ ये स्थिति बनी रहती है कि अपनी कमी कमजोरी को वो छोड़ नहीं पाते हैं।
इसमें मोटे रूप से मैं 2 बातें कहूंगा, बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस एंड बिकॉज ऑफ वीक माइंड, वो छोड़ नहीं पाते हैं। मनोबल बढ़ा चढ़ा नहीं है, मन की शक्तियां बहुत कमजोर पड़ गई हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण मनुष्य इन चीजों के अधीन हो जाता है। देखिए सिगरेट ही तो है 3.5-4 इंच की, लंबा चौड़ा मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, सारे संसार पे राज करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सिगरेट के अधीन रहता है, बीड़ी के अधीन रहता है, शराब के अधीन रहता है। एक और सोचता है मैं बस विश्व पे राज करने लगूं, धरती पर मेरे जैसा कोई ना हो, दूसरी ओर छोटी सी चीज के अधीन। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस भी है और मन की शक्तियों की बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग आने से ही सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने लगते हैं और जो अच्छी तरह कर लेते हैं उनकी सब बुराइयां छूट जाती हैं और जो नहीं कर पाते उन्हें लंबा समय बुराइयों के साथ गुजारना पड़ता है और 1-2 साल के बाद धीरे धीरे बुराइयां छूटती हैं। दूसरा योग अभ्यास, योग अभ्यास का सबसे बड़ा महत्व है ही ये, आज तक इसी चीज की तो मिसिंग थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि हमारे वेदों में दर्शनों में सुंदर बातें नहीं कही गई हैं, बहुत सुंदर बातें कही हैं। उनको धारण करके मनुष्य देवता बन जाए, उनको धारण करके घर घर आश्रम बन जाए, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन उनको धारण करने की शक्ति नहीं है क्योंकि जो परम सत्ता है उससे कनेक्शन नहीं है। तो योग अभ्यास करें और सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करें तो जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं उनको छोड़ने का मनोबल प्राप्त हो जाएगा और जो चीज अपनाना चाहते हैं उनको हम सहज भाव से जीवन में उतार पाएंगे।
बिल्कुल, मतलब ये हमें करना ही होगा, बिना इसके कोई चारा नहीं है क्योंकि मन बहुत कमजोर हो ही गए हैं और योग से ही हमें वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रताप जी, पहली बात पे भी आना चाहूंगा मैं, जैसे पर्वतारोही के सामने तो भगवान ही आ गए थे, उसे तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता कि भगवान सामने आ जाएं प्रत्यक्ष और मुझे बोलें कि ये कर ये ना कर। हमें या तो अपने ग्रंथों के द्वारा या हमें अपने गुरु के द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा ये बात पता चलती है कि हाँ भाई ये कर या ये नहीं कर, तो वहां ये वाली जो एक उहापोह वाली स्थिति है बन जाती है, डायरेक्ट भगवान मुझे कहें ऐसी वाली स्थिति तो है नहीं।
हाँ, ऐसी वाली स्थिति भी है, जो राजयोग के पथ पर चल चुके हैं, जिन्होंने पवित्र जीवन अपना लिया है, उनको रोज के अनुभव हैं कि भगवान सामने आकर ही कहते हैं ये करो ये ना करो। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके बाद भी व्यक्ति को राजयोग के द्वारा अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने की जरूरत है और अपने विवेक को भी दिव्य बनाने की जरूरत है। देखिए संसार में भी किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, मुझे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है या मुझे ये तकलीफ हार्ट की हो रही है, पूछता है डॉक्टर क्रोध तो नहीं करते? तो कहा करता तो हूँ, क्रोध न किया करो आज से। भाई इतना कह के डॉक्टर तो समझता है हमने बहुत अच्छी बात उसे कह दी और नो डाउट इट्स ए गुड थिंग, लेकिन वो क्रोध कैसे न करे, उसके लिए एक सद्विवेक की भी जरूरत होती है। एक तो परमात्म शक्तियों की जरूरत है, लेकिन एक सद्विवेक कि वो एनालिसिस कर पाए कि किन परिस्थितियों में उसे क्रोध आता है और उन परिस्थितियों में वो अपने विचारों को कैसे परिवर्तन करे कि वहां उसे क्रोध ना आए। ऐसे ये सद्विवेक कि वो तो आत्मा पवित्र है, शांत है, क्रोध से मुक्त है, क्रोध तो आत्मा का कोई लक्षण नहीं, गुण नहीं, ये तो पराई चीज है, ये तो मायावी चीज है। तो ये सद्विवेक मिलने से मनुष्य का चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा और ये दोनों चीजें मिलकर किसी मनुष्य को मदद करेंगी वो अपनी बुराइयों को छोड़ सके।
क्या प्रताप जी, आपके जीवन में कभी एक ऐसा अनुभव रहा, वो पर्वतारोही वाली स्थिति मैं लेना चाहूंगा, कोई ऐसा अनुभव कि जब लगा हो कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, शायद इसमें भला है, लेकिन भगवान ने कुछ और ही कह दिया हो कि नहीं नहीं ये नहीं तू ये कर, और बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ हो कि सचमुच मैंने वो किया और मुझे बहुत लाभ हुआ, कोई ऐसी स्थिति? क्योंकि इस स्थिति से मुझे लगता है दो चार सबको होना ही पड़ता है।
नहीं, होना पड़ता है शुरू में कि मान लो बाबा हमें कह रहे थे कि भाई अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो, मुझे जैसे बाबा ने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ज्ञान होना, कैसे लाइफ को चलाना है ये ज्ञान होना भी एक नॉलेजेबल आत्मा की पहचान है। लेकिन मेरे विवेक ने दूसरी तरह काम किया, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो मुझे पता हो मेरे को कोई बीमारी क्यों हो रही क्या, ठीक है भाई बाबा ने तो कह दिया पर करें क्या इसमें, तो हमने उस बात पे केयर नहीं किया। तो बीमारियां तो बड़ी छोटी मोटी, लेकिन बाद में चल के जैसे ही कुछ मैंने अच्छी वो कर ली, जैसे नेचर क्योर कराए दो चार बार, नेचर क्योर की सारी स्टडी कर ली, जब वहां रहते थे 15-15 दिन तो खाली होते थे तो बुक्स होती थी, लाइब्रेरी होती थी, उनकी हम सारी पढ़ ली, तो एक अच्छी नॉलेज मिल गई, एक अच्छी अवेयरनेस मिल गई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कब खाना चाहिए कब नहीं, गड़बड़ हो जाए तो खाना छोड़ देना चाहिए, उठते क्या करना चाहिए, सोते क्या करना चाहिए। तो तब बाबा की वो बात समझ में आई कि अरे बाबा ने 5 साल पहले कहा था अपनी तबीयत को चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए, अब वो ज्ञान हो गया है। तो तब से बहुत चीजें सीख ली, और मान लो कोई कभी कठिनाई होती है तो रात का भोजन छोड़ दिया, ये चीज लेने से कठिनाई हो रही वो छोड़ दी, छोड़ने की शक्ति रहती है। तो ये ऐसी चीज हरेक के जीवन में आती है, किसी को किसी विशेष मार्ग पे चलना होता है। एक घटना मुझे याद आ गई, किसी को कहा कि भाई तुम्हारी तो शराब की दुकान है ये बंद करो, तुम अब ब्राह्मण बन गए हो और ये अच्छा नहीं लगता धंधा, उसको ये बात समझ में नहीं है, उसने चालू रखा तो उनको नुकसान हुआ, जैसे ईश्वरीय अवज्ञा हो गई ना जी, तो जीवन जैसे फलीभूत नहीं हुआ, मजा नहीं आ जीवन में। ऐसे बहुतों के साथ होता है, सिगरेट बेचते हैं, पान तम्बाकू, ये सब जो आजकल की चीजें लोग बेचते हैं, हमसे भी आके पूछते हैं बेचें अभी, पहले तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा धंधा है बेचते रहो, लेकिन जब वो अच्छी तरह बताते हैं कि भाई मन नहीं मानता, अब बाबा ये कहते हैं और हम ये बेच रहे हैं, मन नहीं मानता, तो मैं उन्हें कहता हूँ अब चेंज कर लो अपना बिजनेस, वो चेंज कर लेते हैं, तो ये ईश्वरीय आज्ञा कहा तो हमने पर है तो ईश्वरीय आज्ञा, तो देखते हैं उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है, और ये जो गिल्टी कॉन्शियस उसको होती थी
वो भी दूर हो जाती है। जी जी, हो सकता है थोड़ा सा नुकसान पहले उठाना पड़े, लेकिन परमात्मा की आज्ञा इसमें तो फिर बरकत ही बरकत होगी मुझे ऐसा लगता है, और सबके अनुभव भी ऐसे होते होंगे। चलिए भ्राता जी, मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमें अनुज कुमार ने भेजा है, और ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, इज टूडे you explained that if one is asked to sit and enjoy for a period of 6 months but he will soon bored, is no action is made by him, so please explain how God remains without any action for a long period of 5000 years in spite of supreme power. बड़ा ही गहरा सा आध्यात्मिक प्रश्न इन्होंने पूछ लिया,
बहुत गहरी फिलोसफी है ये। देखिए, वो है आनंद का सागर, इसलिए वो वहां रहते भी परम आनंद में स्थित रहता है, और जहां मनुष्य के मन की आनंदित स्थिति होती है वहां उसको बोरियत नहीं होती है, कोई भी आत्मा हो, और परम आत्मा आनंद का सागर है, ये उसका मुख्य कारण है। लेकिन वो पूरे 5000 साल इनएक्टिव होकर वहां में नहीं बैठा रहता, पहले 2500 साल जब उसका रचा हुआ स्वर्ग इस धरा पर है और सब कुछ सुंदर रूप से चल रहा है, धन धान से संपन्न है, उसके बच्चे पवित्र हैं, रोग शोक से मुक्त हैं। लेकिन द्वापर युग के बाद जैसे ही देव सभ्यता मानव सभ्यता में परिवर्तित होती है, भक्ति प्रारंभ होती है, लोग उसे पुकारना प्रारंभ करते हैं, उसकी मदद की कामना करते हैं, तो वो पुनः एक्टिव हो जाता है, और द्वापर युग के बाद और अब तक वो ऊपर रहकर एक्टिव होता है, और कलयुग के अंत में नीचे आकर एक्टिव होता है।
तो द्वापर और कलयुग में ऊपर रह के ही वो ये सारे कार्य करते रहते हैं। अब रत्न जी, एक चीज जो सैद्धांतिक रूप से जो बात पहले आपने कही थी उस पे मैं आना चाहूंगा, कि ऊपर आपने पहले कहा था परम धाम में कोई फीलिंग्स नहीं होती, सुख दुख की कोई फीलिंग नहीं, तो फिर वहां वो आनंद का अनुभव कैसे कर?
देखिए, ये जो सिद्धांत है ये आत्माओं के लिए है, परमात्मा इन सब चीजों से बियॉन्ड है, और वो वहां रहते भी कहीं भी आ जा सकता है, वो चाहे तो स्वर्ग में आके उसे देख सकता है, वो चाहे तो सूक्ष्म लोक में आके कुछ कार्य कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म लोक तो तब भी होता है, वो तो एक स्पेस है ना, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वहां कोई कार्य तब नहीं चलता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए वहां वो जो परम आनंद में है, अगर हम ये भी कह दें कि वो सब चीजों से बियॉन्ड है, तो वो रियत से भी बियॉन्ड रहेगा, वहां ये चीज की फीलिंग नहीं होती है। वहां सब आत्माओं को ये फीलिंग्स होती अवश्य हैं, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मान लो वो शांति धाम है, जहां आत्माएं रहती हैं वो शांति धाम है, तो आत्मा संपूर्ण शांति में है, अपनी मुक्त अवस्था में है वो उसमें, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। ऐसे परमात्मा जो इन सब चीजों से परे है, वो आनंद का सागर होने के कारण उस आनंद की अनुभूति में सदा ही है, उसको एक्सप्रेस करने की तब जरूरत भी नहीं होती, एक्सप्रेशन तो इस समय आकर वो उसका लेते हैं।
बिल्कुल, मतलब ये बड़े शुभ चिंतक हैं कि प्रभु जी कहीं ऊपर बोर होते हो कि 5000,
हम इन्हें बता दें कि वो बिल्कुल बोर नहीं होते, वो आनंद के सागर, सुखों के सागर हैं, तो उनके वाइब्रेशन ही बहुत सुंदर आनंदकारी होते हैं, उनके बोर होने का प्रश्न।
एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा द्वापर में हमारी जो आवाज, पुकार, दुख या हमारी प्रार्थना पहुंचती है, ये आवाज तो वहां तक नहीं पहुंचती जो आवाज हम लगाते हैं, फिर कैसे वो उसे सुनते हैं, कैसे हमारी कामना पूरी करते हैं?
देखिए, ये होता इस तरह है कि आवाज की बात नहीं, आवाज तो वहां जाएगी नहीं, आवाज चेंज हो जाती है वाइब्रेशंस में, और वाइब्रेशंस जिसके लिए हम कर रहे हैं उस तक वो पहुंच जाते हैं। वाइब्रेशंस को वो तो सदा ही ग्रहण कर लेता है, और उसका रेस्पॉन्स जो रिटर्न होता है वो वाइब्रेशंस के रूप में ही होता है, जो नीचे आके जिसकी जो कामना है शब्द या आवाज उस रूप में वो जैसे ट्रांसलेटेड हो जाता है। तो ये वाइब्रेशंस के द्वारा ही ऊपर जाना, वाइब्रेशंस के माध्यम से ही रेस्पॉन्स आना, प्रैक्टिकल में फिजिकली यहाँ वो स्थूल रूप में
दिखाई देता है। तो क्या इस वाइब्रेशन को वहां तक जाने की जरूरत है? जैसे कई बार आप कहते हैं कि जो हम संकल्प करते हैं वैसा ही वो प्रकृति के साथ मिलके वापस हमें रिटर्न देता है, तो इसे ऊपर परमात्मा तक जाने की क्या जरूरत है, वो यहीं से मिलके हमें वो रिटर्न नहीं देता?
देखिए, ये है क्योंकि वो लोग परमात्मा को पुकार रहे हैं, उसकी प्रेयर कर रहे हैं, यानी इमोशनली मेंटली तो वो उससे जुड़े हुए हैं ना, इसलिए उनके वाइब्रेशंस उसको जाएंगे,
मतलब वहां से जाके ही रिटर्न।
हाँ
ठीक है बेटा जी, दूसरा हमारे पास मेल आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी पे इविल स्पिरिट्स का इफेक्ट है, 6-7 इविल स्पिरिट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे परेशान करते हैं, वो मांस मछली और खून मांगते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं विद्यालय से पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ हूं, क्या ऐसा होता है?
हाँ देखिए, होता तो है, प्रैक्टिकल इनके साथ हो रहा है, और वो लड़की का हाल भी बहुत खराब कर देते होंगे, समझो मेंटली तो वो बिल्कुल वीक कर देंगे,
वो भी 6-7
हाँ, बौद्धिक रूप से तो बिल्कुल वीक कर देंगे, इतनी आत्माओं की जो बैड एनर्जी उसके ब्रेन को जाएगी तो पूरा ही डैमेज कर लेगी, किसी को दिखा देना चाहिए इनको, बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन विद्याओं को जानने वाले होते हैं, और अगर वो कुछ मांगते हैं तो जरूरी नहीं इनको उनको देना है, वो उनके नाम से जो भी इसको जानने वाले उनसे करा देते हैं तो वो भी इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब ये ज्ञान मार्ग पर हैं, तो इन्हें इन आत्माओं की मुक्ति के लिए 21 दिन की योग भक्ति कर देनी चाहिए
जी।
दिन में एक टाइम निश्चित करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर मुक्ति दाता हूं, ईश्वमान में स्वयं को स्थित करके फिर ये संकल्प करें कि अब मैं ये 1 घंटा योग करूंगा, इस योग के बल से इन सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो, अर्थात ये पुनर्जन्म ले लें, और फिर बहुत अच्छा योग अभ्यास करें तो ये आत्माएं पुनः देह प्राप्त कर लेंगी, पुनर्जन्म इनका हो जाएगा, और ये जो इनकी अतृप्त कामनाएं हैं ना, ये भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों की ये अतृप्त कामनाएं होती हैं, भले वो खाएंगे कुछ नहीं पर उनके आगे वो रख लिया जाएगा, उसकी वो रसना जैसी ले लेंगे और तृप्त हो जाएंगे।
एक हमारे पास और मेल आया था बेटा जी, वो खाते ही रहते हैं, मतलब वो भी ऐसा ही केस था कि वो कोई इविल स्पिरिट का इफेक्ट है ऐसा बता रहे थे वो, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनके सामने जो भी रख दिया जाए वो सारे दिन
वो तो वो जिस तन में उसने प्रवेश किया उसके माध्यम से खाते रहे।
जी 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 जी, तो ब्रदर जी फिर ये क्या ये देना चाहिए मांस मछली को?
नहीं, ये जैसे मैंने कहा ये तो ज्ञान मार्ग है, ये तो वैसे भी नहीं दे सकते, इन्हें योग अभ्यास ही करना चाहिए और किसी को दिखा लेना चाहिए, फिर वो ये काम कर देते हैं इनकी ओर से।
जी जी, तो ये मुक्त हो जाएंगे। चलिए हम भी कामना रखेंगे ब्रदर जी, क्योंकि एक बड़ी ही दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है कि कैसे इस स्थिति से निकला जाए और मुक्त हुआ जाए। क्या इसमें विशेष हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण ऐसा है, या हम कहीं किसी गलत जगह पे चले गए, शमशान से गुजर गए, तो ये वाली बात इफेक्ट करती है हमारी?
वो भी करती है, पर बिना कर्मों के हिसाब किताब के यहाँ कुछ भी घटित नहीं होता है। आत्माएं तो बहुत भटक रही, पर वो सब पे इफेक्ट नहीं कर सकती, वो करती उन पर ही है जिनसे उनका कर्मिक अकाउंट बहुत कड़ा जुड़ा रहता है पूर्व जन्मों का। इसलिए हम सदा एक चीज कहते हैं कि किसी को सताओ नहीं, किसी का धन संपत्ति न हड़पो, सदा एक पुण्य कर्म की ओर बढ़े रहो, तो इन चीजों का सामना कभी भी करना नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल, चलिए हमारी भी शुभकामना रहेगी ब्रदर जी कि जल्दी से ये इससे मुक्त हो जाए। एक SMS ब्रदर जी हमारे पास आया हुआ है, मैत्रेयी जी ने भेजा है और ये कहती है कि गुड इवनिंग सर, रिक्वेस्टिंग फॉर प्रेयर्स फॉर माई ब्रदर who is in hospital for the past 1 month, every day complications are increasing. Thank you. ये मैत्रेयी जी हैं ब्रदर जी, जो भाई बहुत तकलीफ में हैं, डे बाय डे स्थिति खराब होती जा रही है। कई ऐसे लोग हैं ब्रदर जी जिनके अपने परिजन ऐसे हॉस्पिटल में हैं। आज मैं चाहूंगा कि आप उन सब के लिए अथवा 2 मिनट हम सबको मेडिटेशन जरूर कराएं। हम सब सामूहिक रूप से आज जो भी हमारे दर्शक भी बैठे हुए हैं, एक साथ मिलके इनको वाइब्रेशन देंगे, ऐसी कामना है।
हाँ, सभी 6 बजे तो देते ही होंगे और देना भी चाहिए। पहले मैं इनके लिए कुछ कह दूं, इनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पानी चार्ज करके उनको पिलाएं, उनके ब्रेन को एनर्जी दें और 1 घंटा उसके लिए योग अभ्यास कर दें रोज, 1 घंटा निश्चित करके। हमने देखा कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसका बहुत सुंदर प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। कल ही हमारे पास एक व्यक्ति आए जिनका कोर्ट में केस चल रहा था 37 ईयर से। देखो, मैंने कहा 37 ईयर भी कोर्ट केस चलता है क्या? ये हमारे फादर का चला आ रहा था, वो हमें फेस करना पड़ रहा है। और 21 दिन ऐसे योग अभ्यास किया और कहा बस 23-24 दिन में ही डेट लगी और फैसला उसी दिन हमारे फेवर में आ गया। 37 साल का केस तुरंत हल हो गया, इनके फेवर में हो गया।
ये तो योग की
बड़ी, योग बल सचमुच संसार का सबसे बड़ा बल है। इनको भी 1 घंटा योग करके उनको योगदान देना चाहिए तो उनकी स्थिति तेजी से सुधर जाएगी।
बिल्कुल, हम चाहेंगे ब्रदर जी 2 मिनट थोड़ा आप ऐसे हम सबको कॉमेंट्री देते हुए प्रैक्टिकल मेडिटेशन कराए कि कैसे हम उनको वाइब्रेशन दें।
हम सभी उन सभी पेशेंट्स को योगदान देंगे जो हॉस्पिटल्स में लंबे समय से कोई कष्ट भोग रहे हैं, और कुछ ऐसे भी केसेज हैं जिनका डॉक्टर लोग इलाज कर भी नहीं पा रहे हैं। जो ऐसे केस हो गए हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया भाई इनक्योरेबल ये केस है, उन सबको अब हम योगदान देंगे। तो स्वयं को स्थित करें, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। सर्वशक्तिवान परम धाम में उन पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें, विजुअलाइज करें उन्हें, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब उनकी ये शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं। ये शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ से निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं, और संकल्प कर दें ये शक्तियां उन सभी पेशेंट को पहुंचे और वो अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए बोल्ड हो जाएं और उनकी अनेक बीमारियां समाप्त होने लगे। डॉक्टर्स को एक बहुत अच्छा मेडिसिन का स्वरूप एक अच्छा डायग्नोसिस मिल जाए, समझ में आ जाए कि इन्हें क्या देने से ये ठीक हो जाएंगे, ये संकल्प भी करें और विजुलाइज करें बाबा की वाइब्रेशंस मुझ में समाकर चारों ओर फैल रहे हैं, पेशेंट्स को जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रत जी, बहुत ही गहन शांति की अनुभूति हो रही थी। और निश्चित रूप से सभी जो भी ऐसे विपदाग्रस्त हैं, चाहे शारीरिक व्याधि हैं, सब इससे मुक्त होंगे और हमारे सभी दर्शकों ने भी इसको बहुत आनंद या एंजॉय किया होगा। अच्छी शांति के वाइब्रेशन ऐसे ही फैलाते रहें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्रत जी और स्पेशली इस योगाभ्यास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच जब ऐसी गहन शांति में बैठते हैं, योग के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो हमारी खुद के दिल को कितना आराम मिलता है और चैन की अनुभूति होती है जब हम सचमुच ऐसे दूसरों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे मैत्रेय जी ने अपने भाई की बात कही थी, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे अपने ऐसी स्थितियों से, बीमारियों से या परिस्थितियों से दो चार होते ही रहते हैं और यदि हम उनके लिए ऐसे योग का दान देंगे तो जल्दी वो भी इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, एक सामान्य जीवन जीने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और यही कहते हैं ना कि भाई हमने अपना काम कर दिया, हमने तो दवा दे दी, अब आप दुआ करो। तो इस दुआ की, इस मेडिटेशन की सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। वो कहते हैं ना कि न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है कि मैं डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है। तो जब हमारे लिए कोई दुआ करता है तो हम डूब भी रहे हों तो वो समंदर उछाल देता है, अर्थात हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। तो मेडिकेशन के साथ साथ हम मेडिटेशन को जरूर जोड़ें, इससे जल्दी से जल्दी हीलिंग होगी और ये सब कार्य हम स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पिरिचुअल वेलविशर्स कर सकते हैं। तो न केवल अपनों के लिए लेकिन सभी के लिए हम ऐसी ही दुआएं करें, शुभकामनाएं करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान।